आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
एक बेहतर जिंदगी, एक नया देश और ढेरों उम्मीदें। लेकिन माइग्रेशन की इस कहानी में पेरेंटिंग की चुनौतियां आसान नहीं होती। आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। मेरा नाम है नबील हसन और आज हम बात करेंगे नीरजा शंकर से, जो ऑस्ट्रेलिया में रहकर साउथ एशियन कम्युनिटीज पर माइग्रेशन के प्रभाव को लेकर रिसर्च कर रही हैं, खास तौर पर पेरेंटिंग और मानसिक सेहत के पहलू पर। उनकी PhD का मकसद है कि पेरेंटिंग से जुड़ी सेवाएं और प्रोग्राम्स ज्यादा सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और सुरक्षित बने। नीरजा चाहती हैं कि उनकी रिसर्च से प्रैक्टिशनर्स और संस्थाएं ऐसी गाइडलाइंस विकसित कर सकें जो डाइवर्स कम्युनिटीज से आने वाले माता पिता को ज्यादा भरोसेमंद और असरदार सपोर्ट दे सकें।
थैंक यू सो मच नबील, आपके इंट्रोडक्शन में बहुत ब्यूटीफुली आपने थोड़ा मेरे रिसर्च के बारे में बताया। मैं ये रिसर्च कर रही हूं क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में और मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस में भी, जब हम मेंटल हेल्थ के लिए सपोर्ट के लिए जाते हैं, बहुत बारी वो प्रैक्टिशनर्स को कैसे हमें सपोर्ट करना पड़ता है वो नहीं पता उनको, क्योंकि हमारे रिसर्च में डाइवर्स कम्युनिटीज के वॉइसेस है ही नहीं। और उससे ज्यादा जो माइग्रेशन के स्ट्रेसेस होते हैं वो पेरेंट्स, चिल्ड्रन और फैमिलीज पर बहुत प्रेशर डाल सकते हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो प्रेशर्स को अंडरस्टैंड करें और उन प्रेशर्स को कैसे बेहतर सपोर्ट कर पाएं वो हम जानें। इसलिए मेरा PhD इस एरिया में फोकस्ड है, ताकि वो जो हमारे सपोर्ट्स और सिस्टम्स हैं वो डाइवर्स कम्युनिटीज को बेहतर सपोर्ट कर पाएं।
नीरजा, क्या इस रिसर्च टॉपिक को चुनने के पीछे आपके निजी या प्रोफेशनल जीवन का कोई खास अनुभव रहा?
ये टॉपिक मैंने एटलीस्ट टू रीजंस के लिए चूज किया था। पहला था जब मैं मास्टर्स कर रही थी, मेरा एक प्लेसमेंट एक एडोलेसेंट सर्विस में था। वहां पर मैं एक बच्ची के साथ काम कर रही थी जो 13 इयर्स की एज की थी, और मुझसे पहले वो एक ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट के साथ काम कर रही थी। ये बच्ची हमारे साउथ एशियन बैकग्राउंड की थी। जब वो ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट के साथ काम कर रही थी, उसके थोड़े बिहेवियर्स और इंटरेक्शन स्टाइल्स ऑटिज्म करके हाइपोथेसाइज किया गया कि शायद इस बच्ची को ऑटिज्म है, इसलिए वो आई कॉन्टैक्ट नहीं देती या सोशलाइजेशन में थोड़ी अलग है। लेकिन जब वो मेरे साथ काम कर रही थी, वो बहुत क्लियरली मुझसे कह पाई कि मैं आई कॉन्टैक्ट नहीं देती क्योंकि हमारे कल्चर में जो लोग अथॉरिटी में होते हैं उनको रिस्पेक्ट देना अलग से हुआ जाता है, और जब जैसे बात करती हूँ वो भी, वो मेरे पेरेंट्स जो वैल्यूज देते हैं इसके वजह से मैं ऐसे आपके साथ इंटरेक्ट करती हूँ, और वो मैं देख पाई क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड उनके साथ मिला हुआ था और वो और कंफर्टेबल हुई ओपन होने के लिए। तो वो एक मोटिवेशन था जो मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा कि हम कैसे हमारे अंडरस्टैंडिंग से किसी बच्चे को या किसी को कोई डायग्नोसिस दे सकते हैं जो एक्चुअली में भी नहीं है, और हम बस वो कल्चरल डिफरेंस नहीं देख पाते, वो न्यूअंस नहीं देख पाते। तो वो एक रीजन था। और सेकंड रीजन है कि मैं ऑस्ट्रेलिया को माइग्रेट हुई जब मैं 11 साल की थी, और मेरे माँ बाप भी वो सपोर्ट, दे ट्राई टू फाइंड द सपोर्ट, लेकिन वो सपोर्ट मिला नहीं उनको क्योंकि वो सपोर्ट था नहीं। तो पर्सनली दोनों साइड से मैंने देखा है कि वो लैक ऑफ कल्चरल अवेयरनेस और लैक ऑफ कल्चरल सपोर्ट क्या इंपैक्ट हो सकता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना और बहुत पैशनेट हूँ मैं इस टॉपिक पर।
जी, आपके अनुभव में साउथ एशिया से ऑस्ट्रेलिया आने वाले लोगों के लिए माइग्रेशन का सबसे बड़ा मेंटल या इमोशनल चैलेंज क्या होता है?
थिंक मोर देन एनीथिंग हमारे कम्युनिटीज में मोस्टली वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन देखा जाता है, क्योंकि जब हम माइग्रेट होते हैं तो हमारा जो नया घर, नए दोस्त, नए सपोर्ट सिस्टम्स, वो हमारे जो हम घर पर थे वहाँ से बहुत अलग है, और वो डेवलप होने में भी टाइम लगता है, तो इसलिए ये एंजाइटी और डिप्रेशन काइंड ऑफ डेवलप हो जाता है क्योंकि वो प्रोसेस कैन बी डिफिकल्ट. सो आई थिंक दैट इज प्रोबेबली द बिगेस्ट थिंग, वो एंजाइटी और डिप्रेशन दिखता है.
कभी कभी एक ऐसा मोड भी आता है जब अपने देश से दूर आकर ये शक होता है कि क्या ये फैसला सही था. ऐसे वक्त में मानसिक रूप से इससे निपटना कितना मुश्किल हो जाता है?
थिंक इसीलिए तो हमें ये सपोर्ट सर्विसेज माइग्रेंट्स को ज्यादा टेलर, वी नीड टू टेलर इट टू माइग्रेंट पॉपुलेशंस, बिकॉज ये जो आपने डायलेमा अभी डिस्क्राइब किया वो इट्स रियली रियल. लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू दैट, एंड जब वो अपने आप वो आप वो कोप करने करना कोशिश करते हैं कि यू नो हाँ यहाँ हमारे बच्चों के लिए स्कूलिंग में भी बेटर है, लेस कंपेटिटिव है, लेकिन ये घर नहीं है, हमारे फैमिलीज नहीं है, हमारे यू नो जो हमें पता है वो तो व्हाट वी नो इज नॉट हियर, तो मैं वापस यू नो मैं वापस चला जाता हूँ, या मैं वापस चली जाती हूँ, या फैमिलीज को यू नो वापस ले जाते हैं, वो और डिसरप्टिव हो सकता है. क्योंकि जब आप वापस जाएंगे तो यहाँ के जो बेनिफिट्स आपको पसंद थे वो वहां नहीं होंगे, राइट? तो दैट कैन बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू कोप विथ, एंड कोपिंग विथ दैट अलोन इज ऑल्सो वेरी हार्ड. यू नीड समवन हु अंडरस्टैंड्स दैट, जो आप आपके साथ वहां उस कंफ्यूजिंग पॉइंट पर बैठकर सब बात कर पाए, तो आपको भी वहां एक स्पेस होगा कि आप ये सारे डायलेमा शेयर कर यू नो बता सकते हैं कि क्यों आपकी सोच एक तरफ है या दूसरी तरफ है, और क्या हो रहा है आपके मन में जो आपको वो फीलिंग्स दे रहे हैं. एंड यू नो ऑन योर पॉइंट एज वेल, आपने वो एक्सेप्टेंस रूट लिया है, तो आप यू नो ये डिसीजन बहुत सोच कर समझ कर आप वो डिसीजन ले रहे हैं. समटाइम्स उस मोमेंट ऑफ एंग्जाइटी या यू नो मोमेंट ऑफ रियली लो मूड और वो डिप्रेशन में जब हम डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन कैन लीड टू मोर रिग्रेट्स. तो अगर हम बहुत एंग्शियस होकर अच्छा छोड़ो हम वापस जा रहे हैं करके वो डिसीजन लेते हैं, तो एक्चुअली जब हम वापस गए तो वी माइट फील मोर रिग्रेटफुल, बिकॉज मे बी उस डिसीजन हम फुली सोच कर समझ कर नहीं ले रहे हैं उस मोमेंट में.
अच्छा, साउथ एशियन कम्युनिटीज में अक्सर डर रहता है कि प्रवास के बाद हमारी कल्चरल वैल्यूज बदल जाएंगी, लेकिन अब इतने बड़े पैमाने पर लोग यहाँ आ चुके हैं, क्या आपको लगता है कि ये वैल्यूज कमजोर होने के बजाय और मजबूत भी हो सकती हैं?
नहीं, आई थिंक वो होगा, क्योंकि मेरा जो एक पार्ट ऑफ द रिसर्च वो कल्चरल वैल्यूज पर ही फोकस्ड है, और वो वैल्यू से देखता है कि जब हम ऑस्ट्रेलिया में मूव होते हैं तो नॉट जस्ट चिल्ड्रन, पेरेंट्स भी वो अपने जो कल्चरल वैल्यूज लेकर आते हैं अपने साउथ एशियन कल्चर से, वो अपने ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज के साथ इंटीग्रेट करते हैं. तो आपके भी एज अ पेरेंट आपके भी वैल्यूज स्टैटिक नहीं होते, वो भी बदलते रहते हैं आपके सेटलमेंट प्रोसेस में, वो भी बदलते हैं. तो आई थिंक इन टाइम, इन 10 years टाइम, जो हम वैल्यूज पेरेंट्स और चिल्ड्रन होल्ड करते हैं वो एक इंटीग्रेटेड वैल्यू सिस्टम होता है, नॉट जस्ट यू नो साउथ एशियन वैल्यूज और ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज, ऐसे नहीं होता है, वो इंटीग्रेटेड होता है. एंड इनफैक्ट रिसर्च ये भी दिखाता है कि वो इंटीग्रेटेड वैल्यूज हमारे मेंटल हेल्थ के लिए एक्चुअली बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, कि अगर हम सिर्फ अपने साउथ एशियन वैल्यूज को होल्ड करते हैं या अपने साउथ एशियन वैल्यूज को कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर सिर्फ ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज को अडॉप्ट करते हैं, तो वो एक्चुअली हमारे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता. वो इंटीग्रेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यूज में.
नीरजा, आप अपनी रिसर्च के आधार पर ऑस्ट्रेलिया में होने वाले खास प्रोग्राम्स में पेरेंटिंग गाइडलाइंस में किस तरह के बदलाव देख रही हैं?
लुक, अभी मैं कंफर्म नहीं कह सकती कि क्या गाइडलाइंस में होने चाहिए या क्या नहीं, क्योंकि वो प्रोसेस अभी हो रहा है, हम लोगों से बात कर रहे हैं, पेरेंट्स हमारे लिए सर्वेज कंप्लीट कर रहे हैं, तो एज आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन आई विल बी एबल टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट शुड और शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द गाइडलाइंस. लेकिन समथिंग दैट साइकोलॉजी में और या मेंटल हेल्थ में जो हम बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ को डिजाइन. बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है कि, एंड ये मैं मेरे प्रैक्टिस में भी हमेशा मानती हूँ, कि जो लोग मुझे देखने आते हैं और मेरे साथ काम करने आते हैं वो एक्सपर्ट्स हैं, यू नो द क्लाइंट इज द एक्सपर्ट, एंड इन दिस सिनेरियो मेरे लिए द माइग्रेंट इज द एक्सपर्ट, हम हमारे एक्सपीरियंसेस के एक्सपर्ट्स हैं. तो यू नो हाउ डू वी गो टू अ प्रैक्टिशनर जो रिसर्च में हमारे वॉइसेस को देखा भी नहीं है और वो प्रैक्टिस हम उन पर डाल रहे हैं, वी आर जस्ट फिटिंग दैट ऑन टू देम, राइट. तो मेरा बिगेस्ट एम है कि हमारी वॉइसेस रिसर्च बेस में और स्ट्रेंथन होना चाहिए, क्योंकि हम इस एरिया के एक्सपर्ट हैं. हमारे एक्सपीरियंस से ये जो ट्रीटमेंट्स और सर्विसेज और सपोर्ट है वो और टेलर हो सकते हैं हमारे कम्युनिटीज के लिए, और दैट कैन बी हेल्पफुल बिकॉज व्हेन द को डिजाइन अप्रोच इज अप्लाइड इट इज शोन दैट पीपल हु एक्सेस दीज सर्विसेज वो ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, वो ज्यादा पॉजिटिव आउटकम बेनिफिट कर सकते हैं और बहुत सारे पॉजिटिव्स आते हैं उससे.
जी, आप एक सर्वे के जरिए कई ऐसे माता पिताओं के माइग्रेशन और पेरेंटिंग से जुड़े अनुभवों और चुनौतियों को समझने की कोशिश कर रही हैं. इसमें आपको कैसा पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है?
इट्स बीन गुड. मैं बहुत इंडियन ऑर्गेनाइजेशन से बात कर चुकी हूँ जो मेरे सर्वे लिंक वो शेयर कर रहे हैं स्टफ, एंड वो लोग बहुत सपोर्टिव हैं जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो सब देखते हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है ये रिसर्च और ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना. वन पार्ट जो थोड़ा मुश्किल है कि समटाइम्स आई एम नॉट एबल टू टॉक टू द पेरेंट्स डायरेक्टली, तो जब ये लिंक सर्कुलेट होता है सर्वे के लिए समटाइम्स द पेरेंट्स आर एबल टू कनेक्ट विद इट, क्योंकि उनके सोच में ये होता है कि ये मैं ये क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, इसकी पर्पस क्या है. तो वो थोड़ा मुश्किल है कि यू नो उन पेरेंट्स के साथ मैं डायरेक्टली नहीं बात कर पा रही हूँ. समटाइम्स ये ऑर्गेनाइजेशन लिंक भेज रहे हैं और वो समटाइम्स गेट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, लेकिन यू नो आई गॉट अबाउट एटलीस्ट आई थिंक 100 पेरेंट्स सो फार हुव कम्प्लीटेड माई सर्वे एंड हैव बीन वेरी सपोर्टिव एंड गिवन मी देयर टाइम to help me with this, which I'm very, very, very appreciative of, because unke bagair ye research ho nahi payega.
Ji, aur unhi ke first hand experiences se ye samjha ja sakega ki kin pehluon mein waqai badlav ki zarurat hai. Isliye un mata pitaon ka apna anubhav saajha karna behad zaruri hai.
Correct, and that's exactly it, kyunki already hamare upar itne burdens hai ki hum aakar settle ho rahe hain, hum काम यहाँ ढूंढ रहे हैं, हम यहाँ प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बन रहे हैं, और उसके ऊपर हमारे ऊपर भी इतना बर्डन होता है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकें कि ये सर्विसेज और सब हमारे एक्सपीरियंसेस को अकाउंट में लें. तो माय बिगेस्ट एम इज दैट द टाइम एंड एफर्ट दैट दीज पीपल हैव स्पेंट गोज फ्रूटफुली, और यहाँ से मैं सपोर्ट कर पाऊंगी और वो गाइडलाइंस डेवलप कर पाऊंगी जैसे वो पेरेंटिंग प्रोग्राम्स और सपोर्टिव और टेलर्ड हो पाए.
एक आखिरी सवाल नीरजा, क्या आप उन माता पिताओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी जो सब कुछ पीछे छोड़कर अपने बच्चों और परिवार के बेहतर भविष्य के लिए ऑस्ट्रेलिया प्रवास कर गए हैं?
एब्सोल्युटली. लुक, यू नो हैविंग माइग्रेटेड टू अ न्यू कंट्री इज अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, एंड यू हैव डन दैट एंड दैट इज वेरी एडमिरेबल. आपके फैमिली, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए आपने ये स्टेप लिया है, जो आपके अपने घर छोड़कर यहाँ नई लाइफ शुरू की है. रियली रियली एडमिरेबल ऑफ यू, इट्स वेरी इम्प्रेसिव. देर आर सपोर्ट्स आउट देयर, अगर आप मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं सपोर्ट्स हैं आपके लिए. प्लीज 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 लुक फॉर द राइट सपोर्ट, हैव द राइट पीपल टू टॉक टू, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. एंड समटाइम्स the first person you talk to may not be the right person for you, but that's okay. If you keep looking, you will find the right person for you, and you need to have that support. So please, if you ever are looking for any of that support, please talk to your GP, talk to your schools. They all have resources which they can help you with. Yeah. So thank you. Thank you for everything.
SBS Hindi पर ये रिपोर्ट आपके लिए प्रस्तुत की नबील हसन ने. इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी सामान्य है, SBS ना ही यहाँ प्रकट किए गए विचारों से सहमत है और ना ही असहमत.
हमसे जुड़िए जब आप चाहें SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के यूट्यूब चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो टीवी चैनल 305 SBS ऑन डिमांड या फिर हमारी वेबसाइट पर भी।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।